प्रिय मित्रों नमस्कार। आज जुलाई 2018 का आखिरी दिन है, यानी कि 31 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल जीवन के अंतर्गत मैंने एक अलग तरीके से आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने आइंस्टीन, न्यूटन, विथोविन और डिज्नी साहब, इन सब के बचपन की जो प्रतिभा थी या जब बड़े भी हो गए तब जो उनकी स्थिति थी प्रतिभा की, उसका थोड़ा सा उल्लेख किया था और उसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ बातें की थी। उसी तथ्य को लेकर के कुछ मुझे मेल मिले और उसमें से कुछ दोस्तों ने जानना चाहा है कि सर फिर टैलेंट का पता लगाया कैसे जाए। मुझे लगता है कि यदि उनके मन में यह प्रश्न उठा है या जिज्ञासा पैदा हुई है तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। और अक्सर भी जब यंग स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनके सामने यही संकट होता है और इस पर वो बात करना चाहते हैं कि सर हम कैसे यह जाने कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाने, आप क्यों कह लीजिए। मित्रों, इसी बारे में मैं आपसे कुछ बातें आज करूंगा कि हम कैसे जाने। देखिए, जहां तक प्रतिभा का सवाल है, जो मेरी अपनी दृष्टि है मित्रों, उसके आधार पर मुझे लगता है कि यह दो तरह की होती है और हमें इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे नहीं समझते हैं तभी हमारे दिमाग में यह द्वंद्व खड़ा होता है कि मेरे अंदर क्या है, क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो शायद इस अंतर को समझ लेने के बाद थोड़ी सी दृष्टि स्पष्ट हो जाए। एक प्रतिभा, जिसे आप टैलेंट कह लीजिए, मैं जीनियस की बात नहीं कह रहा, हम टैलेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जो टैलेंट है एक तो प्रकृति प्रदत्त होती है या कह लीजिए कि नैसर्गिक होती है, नेचुरल होता है, या यूं कह लीजिए कि प्रकृति ने ही उसको शुरू से ही बना करके भेजा है। अगर आप धार्मिक रुचि के व्यक्ति हैं तो कह लीजिए कि ईश्वर ने उसे ऐसा ही बना करके भेजा है या उसे पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि इस बार उसको ये सब कुछ मिला है, जो भी आप नाम देना चाहें, उसे मैंने नाम दिया है प्रकृति प्रदत्त या नैसर्गिक। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत ब्रिलियंट है, किसी क्षेत्र में बहुत जबरदस्त रूप से आश्चर्यजनक काम करके दिखा रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि साथ 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, टीवी पर एक गीतों का बच्चों का प्रोग्राम आता था, सारागामा टाइप का, तो उसमें जयेश नाम का लड़का था, दिल्ली का लड़का है, वो 4-1 साल का रहा होगा, 3.5-4 साल का लड़का, और क्या गाता था, मतलब दंग रह जाना पड़ता था। और वो जो म्यूजिक के का जो व्याकरण होता था उसके ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब दे देता था कि जो म्यूजिशियन है, संगीतज्ञ है, वो दंग रह जाते थे कि इस बच्चे को कैसे मालूम है। तो अब जब हम सोचते हैं कि भाई इस बच्चे में यह प्रतिभा कहां से आई, यह टैलेंट कहां से आया, किसी से उसने सीखा नहीं, हाँ ये बात जरूर कही गई। उसी के साथ ही मुझे ध्यान आ रहा है कि इनके जो दादाजी थे वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो उसको हम लोग फिर इस तरीके से जोड़ लेते हैं कि वो दादाजी का जो टैलेंट था वो जीन्स के माध्यम से इसमें आ गया। चलिए, ये एक अलग बात है। तो मित्रों, ये जो उस बच्चे की प्रतिभा है ये बेसिकली यूं कह लीजिए कि नैसर्गिक है, उसे जन्म से मिल गया है। क्यों मिला, कैसे मिला, किस तरीके से मिलता है, अभी हम उस पर न पड़े क्योंकि वो हमारे रिसर्च का विषय नहीं है। दूसरी जो प्रतिभा होती है, देखिए, वो होती है अर्जित प्रतिभा, अर्न, यानी कि हम मेहनत करके उसे प्राप्त करते हैं। ये जो नैसर्गिक प्रतिभा है ये देखिए कभी कभी किसी किसी को मिलती है, इसमें बहुत आपको थोड़े से लोग मिलेंगे। कभी कभी आप सुनते हैं कि उसने इतनी कम उम्र में इतने कोर्स कर लिए, इतनी क्लासेस पास कर ली और इतना जनरल नॉलेज उसका स्ट्रांग है, इस तरह की बातें आप सुनते हैं और उसके पीछे हमें कोई क्लू नहीं मिलता है, तो इसे हम नैसर्गिक मानते हैं, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी प्रतिभाएं आपको कभी कभार ही कहीं कहीं सुनने और देखने को मिलती होंगी, ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, जो कॉमन है फ्रेंड्स वो अर्जित प्रतिभा है, यानी कि श्रम के माध्यम से हम उसे हासिल करते हैं। और याद रखिए यह भी प्रतिभा ही है, अर्जित प्रतिभा। कल मैंने जो नाम आपके सामने आप रखे थे वो सब के सब नाम अर्जित प्रतिभा वाले नाम थे, अदरवाइज तो नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में तो वो सब के सब फेलियर थे। उसमें कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, निकाले जा रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन भी उन्हीं लोगों में थे, उनको तो क्लास से टीचर ने निकाल दिया था कि इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। और थॉमस अल्वा एडिसन बाद में जाकर के आपको मालूम है कि थोक आविष्कारक बने। थोक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि उनके नाम से जितने रजिस्टर्ड है इन्वेंशन उतने किसी के नाम से नहीं है, सबसे ज्यादा उनके नाम से है, तो इसीलिए उनके थोक आविष्कारक माना जाता है। और एडिसन ने बहुत क्लियरली कहा भी कि जो प्रतिभा है या जो टैलेंट है या कोई जीनियस जो भी कह लीजिए, वो 99% श्रम है, और जो 1% है उसे आप भाग्य कह लीजिए, संयोग कह लीजिए, जो भी कहना चाहे, अदरवाइज 99% श्रम है, यानी कि अर्जित है, हम अर्जन उसका करते हैं। तो दोस्तों, हम जब ये सोचते हैं कि अपने अंदर की प्रतिभा को हम कैसे पहचाने, तो हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यहां प्रतिभा से मेरा आशय क्या है। देखिए, जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है उसे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी दिखता है। जैसे आकाश में सूरज निकला है या नहीं निकला है, आपको अनुमान नहीं लगाना पड़ता, सूरज निकला है तो निकला है क्योंकि वो दिखाई देगा। मैं बादलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बादलों के पीछे छिप तो गया है वो। तो मित्रों, जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है वो दिखाई देती है, उसी को लेकर के हमारे यहां कहा भी गया है शायद कि पूत के पांव पालने में, यानी कि बचपन से वो दिखाई दे रहा है। तो जो अर्जित प्रतिभा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप हम सब लोगों में जो बड़ी संख्या है वो अर्जित प्रतिभा वाले हैं। हम में अभी प्रतिभा नहीं है, हम में कोई ऐसी विशिष्टता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में संभावनाएं नहीं है, हम संभावनाओं से भरे हुए हैं। प्रकृति ने हमें संभावना विहीन बनाकर नहीं भेजा है। अब सवाल यह है कि मुझ में किस बात की संभावना है, इसको मैं कैसे जानूं? बस हमें इस पर विचार करना चाहिए, व्यावहारिक यही होगा। देखिए, संभावनाओं के बारे में दो बातें मुझे लगता है कि व्यावहारिक बात मैं कर रहा हूं, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलॉसफी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही व्यवहार की बात कर रहा हूं। मित्र, जब हम अपनी प्रतिभा के इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो इसका एक व्यावहारिक पक्ष जो होता है वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारी आर्थिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है। हम सबको आर्थिक अवलंबन चाहिए, आर्थिक आधार चाहिए, पेट भरने के लिए अपना और अपने परिवार के सदस्यों का, अपने बूढ़े माता पिता का, और भी जो सामाजिक हमारे दायित्व तो है उन्हें पूरा करने के लिए, राइट। तो अब जब भी मैं अपने आर्थिक स्वावलंबन के आधार पर अपने कार्य को चुनूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अब वहां देखिए कि मेरी प्रतिभा उतना ज्यादा मायने नहीं रखेगी जितना यह मायने रखेगी कि मेरी आर्थिक जरूरत पूरी हो। यह मैं बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूं, बहुत ही अधिक व्यावहारिक बात कर रहा हूं। और यदि मैं यह निर्णय लेता हूं कि नहीं, मुझे अपनी आर्थिक जरूरत पूरी करने के लिए यह काम करना है जबकि मैं कुछ और करना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं जो और करना चाह रहा हूं उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है मित्रों। यहीं पर हमसे फिर एक चूक होती है, हमें लगता है कि हम इसे करने लगेंगे तो फिर उधर उधर करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। अब होता यह है कि जो मेरा आर्थिक अवलंबन है वो मुख्य काम बन जाता है क्योंकि मुझे करना ही है, वह मुझे जीवन का आधार दे रहा है, लेकिन मेरी जो रुचि है, यहां मैं रुचि शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो प्रतिभा है, प्रतिभा के साथ सीधे सीधे आपकी रुचि जुड़ी हुई है। और जो मैं रुचि की बात कर रहा हूं वो कर्म से बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी को फिल्म देखना बहुत पसंद है, तो फिल्म देखना उस तरह का कर्म नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, खेलना रुचि हो सकता है, फिल्म मेकिंग एक्टिंग वो रुचि हो सकती है, लेकिन फिल्म देखना वो रुचि में नहीं है, जो यहां मैं थोड़ा सा उसे क्लियर कर दूं। तो जब मैं अपने आर्थिक अवलंबन वाला काम कर रहा हूं और इसके बाद जो मेरी अपनी रुचि है उसमें इतना फोर्स होना चाहिए तभी वो जेन्यून रुचि होगी। सही जो आप कह लीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसका प्रमाण यही होगा कि वो मुझे अंदर से कितना प्रेशराइज करती है, उसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, मैं बेचैन रहता हूं, उसके लिए मैं किसी भी तरीके से समय निकालता हूं, किसी भी तरीके से मैं साधन जुटाता हूं, मैं कुछ करता हूं उसके लिए। तब मान करके चलिए कि नहीं, ये जो मेरी रुचि है ये वास्तव में सच्ची रुचि है, ये खरा 24 कैरेट सोना है ये। तो जब वो 24 कैरेट सोना है और आपके अंदर वो एक दबाव पैदा करेगा तो आप पाएंगे कि अपने आप उसके लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। तो अब होगा आगे चलकर कुछ समय के बाद, थोड़ी शुरू में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कि हमारी जो आर्थिक जरूरतें हैं उससे संबंधित जो काम है और मेरी अपनी जो रुचि वाला काम है, इन दोनों में स्वाभाविक रूप से तालमेल बैठ जाएगा, दोनों निभने लगेंगे। और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि जो मेरी रुचि वाला जो क्षेत्र है वो इतना प्रोमिनेंट हो जाए कि वह मुझे मिल जाए और ये मुझसे छूट जाए, तो वो जो मेरे रुचि वाला जो क्षेत्र है जिसे मैं अपनी प्रतिभा कह रहा हूं उसमें मेरे दोनों ही काम, दोनों ही संकल्प पूरे हो जाएंगे, दोनों ही कह लीजिए काम निभ जाएंगे, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक तो मैं अपने आप अपनी पसंद का काम कर रहा हूं, अपनी प्रतिभा के अनुकूल काम कर रहा हूं, और दूसरा ये भी हो रहा है कि मुझे आर्थिक अवलंबन भी मिल रहा है। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी व्यावहारिक बातें, आप सबसे टैलेंट का पता कैसे लगाएं, प्रतिभा को कैसे पहचाने, इसको लेकर के की है। आप लोग यदि और कुछ प्रश्न रखेंगे तो मैं उसके जवाब अपने ढंग से देने की कोशिश करूंगा। चूंकि अब तो वक्त हो चला है तो अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।